ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उन्होंने हमेशा प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा के केंद्र और लोगों के पीएमओ के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत नेपाल को भारत का प्राथमिकता वाला भागीदार बताया। निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार को आश्वासन दिया कि वो हरियाणा सरकार से राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का पानी छोड़ने के लिए वार्ता करेंगे। पूर्वी दिल्ली से पहली बार सांसद बने हर्ष मल्होत्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने हमेशा प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा के केंद्र और लोगों के पीएमओ के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद आज प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश ने जो हासिल किया है उससे और अधिक हासिल करना है और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है।
10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है, और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया, वो वक्त चला गया दोस्तों। इससे आगे कुछ नहीं है तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है।
सरकारी कर्मचारियों के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का प्रत्येक कर्मचारी वास्तव में इस चुनाव में जीत का हकदार है, क्योंकि कर्मचारियों ने अपने योगदान में कोई कसर नहीं छोड़ी।
इस विजय के सच्चे हकदार कोई है तो भारत सरकार के हर कर्मचारी हैं कि जिन्होंने एक विजन के लिए अपने आप को खपा देने में कोई कमी नहीं रखी और देश में पहले से बहुत तेज गति से काम हुए जिसका परिणाम भी नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं।
श्री नरेंद्र मोदी ने आज तीसरी बार प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के साथ ही किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। ये किस्त 9,30,00,000 किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाएगी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार का पहला निर्णय किसानों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार कृषि क्षेत्र और किसान कल्याण के लिए और प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
पीएम किसान योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देशभर के सभी भूमिधारक किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रूपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। यह राशि किसानों को 2,000 रूपये की 3 किस्तों में दी जाती है। पीएम किसान योजना के तहत 100% राशि केंद्र सरकार द्वारा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना से अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ हुआ है और उनके बैंक खातों में 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सरकार आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरों के निर्माण के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करेगी। आज नई दिल्ली में नवगठित एनडीए सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। केंद्र सरकार पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू कर रही है। योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4,21,00,000 आवास पूर्ण किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत उनके तीसरे कार्यकाल में क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए काम करना जारी रखेगा। श्री मोदी ने क्षेत्र में लोगों के बीच प्रगाढ़ संबंध और संपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कल रात राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह के बाद भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं से भेंट के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने इन नेताओं को धन्यवाद देते हुए पड़ोसी प्रथम नीति और सागर दृष्टिकोण के प्रति भारत की वचनबद्धता दोहराई। मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइज़ू ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। डॉ मुइज़ू का स्वागत करते हुए श्रीमती मुर्मू ने नई सरकार और मालदीव के लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि डॉ मुइज़ू के नेतृत्व में मालदीव समृद्धि और विकास के पथ पर बढ़ता रहेगा। राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि आने वाले वर्षों में भारत मालदीव के संबंध प्रगाढ़ होंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनौथ ने भी राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि मॉरिशस हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण समुद्री भागीदार है। दोनों नेता अद्वितीय और बहुआयामी भारत मॉरिशस साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि नेपाल भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत एक प्राथमिकता वाला भागीदार देश है। सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू ने सेशल्स को उसकी विकासात्मक आकांक्षाओं में समर्थन देने और सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। दोनों नेता आपसी लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी प्रथम नीति के तहत नेपाल को भारत का प्राथमिकता वाला भागीदार बताया है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड के साथ अपनी मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों देशों के बीच अद्वितीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज दिल्ली में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उनकी बातचीत भारत मॉरिशस के विशेष संबंध को दर्शाती है। डॉ जयशंकर ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बढ़ते भारत नेपाल सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइज़ू से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो भारत और मालदीव के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोब्गे और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफी से भी मुलाकात की। निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इनमें से 4 विधानसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में, 3 हिमाचल प्रदेश में, 2 उत्तराखंड में और 1-1 बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब में है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि इन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान अगले महीने की 10 तारीख को होगा और मतगणना 13 जुलाई को होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार को आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा सरकार से राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का पानी छोड़ने के लिए बातचीत करेंगे। आज उपराज्यपाल से बैठक के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि दिल्ली में अभी तक हिमाचल प्रदेश से भी पानी नहीं प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के साथ जारी कथित विवाद के कारण हरियाणा भी दिल्ली में पानी नहीं छोड़ रहा है।
एलजी साहब केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, तो हमने एलजी साहब से रिक्वेस्ट किया कि हरियाणा से स्पेसिफिकली बात करें, जो मुनक कनाल में पानी कमा रहा है। हर साल गर्मियों में भी इवेपोरेशन लॉस के बावजूद मई जून में जब मुनक कनाल से 1050 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो 990 क्यूसेक से ज्यादा पानी दिल्ली के एंट्री प्वाइंट पर पहुंचता है, परंतु पिछले एक हफ्ते में 7 जून को तो यह 840 तक गिर गया था, पिछले 2 दिन में 850 तक पहुंचा है। इस जो पानी मुनक कनाल से दिल्ली में आता है, इससे दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स डिपेंडेंट, क्योंकि मुनक कनाल का पानी गिर रहा है, क्योंकि वजीराबाद में पानी का लेवल कम है, तो जो हमारा वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका पिछले कुछ दिनों में 30 MGD ऑलमोस्ट पानी का प्रोडक्शन कम हुआ है, जिससे दिल्ली वालों पर बहुत सीरियस असर पड़ रहा है।
वहीं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जल को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा। उन्होंने आतिशी की भी कड़ी आलोचना की है।
देखिए हम पहले भी कहते रहे हैं दिल्ली सरकार की अक्रमणता के कारण दिल्ली में पानी की कमी है। आज दिल्ली वाले जो पानी के लिए तरस रहे हैं उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो आम आदमी पार्टी है। और जहां तक आतिशी मार लेना की बात है, मैं पहले कहता हूं आतिशी मार लेना मतलब झूठ की मशीन।
दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने राजधानी में क्लस्टर बसों के संकट के लिए केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने पिछले 10 साल में दिल्ली के लिए एक भी बस नहीं खरीदी है। ये उसी का नतीजा है कि अब बसें एक साथ सड़कों से हट रही हैं।
श्री भदूरी ने कहा कि दिल्ली में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तत्कालीन सरकार ने बसें खरीदी थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पहले 12,000 बसें और फिर 15,000 बसें उपलब्ध कराने का वादा चुनावों के दौरान किया था, लेकिन 2022 तक दिल्ली में एक भी बस नहीं आई। उस दौरान दिल्ली में चल रही DTC की तमाम बसें अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 5 सालों में लगातार सरकार को याद दिलाती रही कि इन बसों की उम्र पूरी हो चुकी है और अगर इन्हें सड़कों से हटाना पड़े तो दिल्ली बेबस हो जाएगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट चरमरा जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। श्री भदौरी ने याद दिलाया कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत 2 साल पहले हुई है और ये बसें भी केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली को दी गई। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से अमन यादव।
पूर्वी दिल्ली से पहली बार सांसद बने हर्ष मल्होत्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया है। श्री मल्होत्रा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राज्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। श्री मल्होत्रा ने लोकसभा चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंडी गठबंधन के कुलदीप कुमार को 93,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। वो पार्टी में अपने संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं। IIT दिल्ली इस महीने की 18 तारीख को JEE एडवांस 2024 की परीक्षा में सफल महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए हाइब्रिड मोड ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक ओपन हाउस का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम इनिशिएटिव फॉर जेंडर इक्विटी एंड द्वारा आयोजित किया जाएगा। ओपन हाउस का आयोजन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। रक्षा मंत्रालय में कार्मिक विभाग के प्रमुख VADM संजय भल्ला ने आज नई दिल्ली में सिंघू शिखर कार रैली को हरी झंडी दिखाकर लेह और वहां से वापसी के लिए रवाना किया। इस रैली का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और उत्तरी राज्यों में समुद्री चेतना के बारे में जागरूकता फैलाना है। 40 नौसैनिकों वाला यह अभियान सुदूर क्षेत्रों से गुजरते हुए 18 दिनों में 3,637 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। दिल्ली पुलिस के रोहिणी जिला की एंटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेल की एक टीम ने 8 जुआरियों को गिरफ्तार कर 2 सट्टा रैकेट का भंडाफोड़ किया है। उनके कब्जे से करीब 19,000 रूपये भी जब्त किए गए हैं। रोहिणी जिले के पुलिस उपायुक्त गुर इकबाल सिंह सिंधु ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जुए में प्रयुक्त जुआ खेलने के ताश और सट्टा पर्ची भी जब्त की गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने छीने और चोरी किए गए मोबाइल फोन की बिक्री और खरीद करने वाले नेपाल से जुड़े एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। ये गिरोह देश विदेश में सांठगांठ करके इन मोबाइलों की बिक्री और खरीद में शामिल था। पुलिस ने इस गिरोह के 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राजधानी में आज कड़ी धूप खिली रही जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि न्यूनतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कल का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्होंने हमेशा प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा के केंद्र और लोगों के PMO के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत नेपाल को भारत का प्राथमिकता वाला भागीदार बताया। निर्वाचन आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। दिल्ली के उपराज्यपाल दिनेश कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार को आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा सरकार से राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का पानी छोड़ने के लिए बातचीत करेंगे और पूर्वी दिल्ली से पहली बार सांसद बने हर्ष मल्होत्रा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिपरिषद में शामिल किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।